अध्याय 8 कोश विज्ञान। कोश विज्ञान का स्वरूप। कोश विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं जिसमें कोश निर्माण की विधि का वैज्ञानिक विवेचन किया जाता है। आजकल कोश विज्ञान को भी भाषा विज्ञान की एक शाखा के रूप में मान्यता प्राप्त है, क्योंकि यह कोश के बारे में व्यवस्थित ज्ञान प्रदान करने वाली एक ऐसी विधा है जो विभिन्न व्यक्तियों, भाषाओं, पुस्तकों, साहित्यों आदि की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है तथा जिसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया के आधार पर विषय का विभाजन एवं विवेचन किया जाता है। अंग्रेजी में इसे लेक्सिकोलॉजी कहते हैं। कुछ विद्वान इसे कोश कला अर्थात लेक्सिकोग्राफी कहना उपयुक्त समझते हैं और इसे कोश विज्ञान से पृथक मानते हैं। उनका तर्क है कि कोश विज्ञान में उन सिद्धांतों का विवेचन किया जाता है जिनके आधार पर कोशों का निर्माण किया जाता है, और कोश कला उस प्रक्रिया का नाम है जिसके आधार पर विषय विभाजन करके किसी कोश का निर्माण किया जाता है। इनमें से कोश विज्ञान यदि कोश के सिद्धांत पक्ष का द्योतक है तो कोश कला उसके कला पक्ष की वाचक है। इस प्रकार कोश कला को कोश विज्ञान का व्यवहारिक रूप कह सकते हैं, परंतु ध्यानपूर्वक देखा जाए तो दोनों परस्पर संबंध है, क्योंकि प्रत्येक विज्ञान के दो पक्ष होते हैं जिनमें से पहला सैद्धांतिक पक्ष कहलाता है और दूसरा व्यवहारिक पक्ष होता है। इस दृष्टि से कोश निर्माण संबंधी विज्ञान के लुप्त दोनों ही पक्ष पूर्णतया अपेक्षित हैं, अतः दोनों को पृथक पृथक न मानकर दोनों का अंतर्भाव कोश विज्ञान में ही हो सकता है। कोश विज्ञान की यह पद्धति अत्यंत प्राचीन है। भारत में कोश निर्माण का कार्य सबसे पहले प्राचीन काल में ही आरंभ हो गया था। यास्क मुनि द्वारा प्रणीत निघंटु इसका ज्वलंत उदाहरण है। इससे पूर्व भी कई निघंटुओं अथवा शब्द कोशों का निर्माण हुआ था। इन निघंटुओं की रचना लगभग 1000 ईस्वी पूर्व हुई थी। इस प्रकार 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक भारत में कई प्रकार के महत्वपूर्ण कोशों का निर्माण हो चुका था, जबकि यूरोप में 1000 ईस्वी से पहले अच्छे कोश नहीं मिलते। अंग्रेजी के उल्लेखनीय कोशों का निर्माण ईसा के 16वीं शती के अंतिम चरण में हुआ है। इतना स्पष्ट है कि यूरोप के ये कोश आज संसार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कोशों में भेद। कोश निर्माण ने लिए यह अपेक्षित है कि जिस विषय का कोश बनाया जाता है उसका विभाजन आकार आदि क्रम से करके उस विषय के संबंधित संपूर्ण सामग्री को इस प्रकार व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया जाता है जिससे उस विषय से संबंधित सभी अंगों एवं अवयवों का ज्ञान भली प्रकार हो सके। यदि कोई व्यक्ति उस विषय से संबंधित किसी अंग का अवयव के बारे में कुछ जानना चाहता है तो वह कोश में उससे संबंधित सामग्री के विवेचन को पढ़कर उसका यथेष्ट ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार कोशों में संकलित सामग्री को आधार बनाकर इनका विभाजन 5 भागों में किया जा सकता है। पहला व्यक्ति कोश, दूसरा पुस्तक कोश, तीसरा विषय कोश, चौथा भाषा कोश और 5वां विश्व कोश। पहला व्यक्ति कोश। इस कोश के अंतर्गत किसी एक साहित्यकार द्वारा अपने साहित्य में प्रयुक्त शब्दों का संकलन, उनकी व्याख्या आदि दी जाती है, उसे व्यक्ति कोश कहते हैं। ऐसे कोश में किसी एक साहित्यकार के समूचे साहित्य में प्रयुक्त शब्दों का आकार आदि क्रम से संकलित किया जाता है और उन शब्दों के आगे उन पुस्तकों के पृष्ठों का भी उल्लेख किया जाता है जहाँ जहाँ वह शब्द प्रयुक्त हुआ है। इसके उपरांत यदि आवश्यक होता है तो उन पंक्तियों का भी उल्लेख कर दिया जाता है जिसमें अमुक शब्द व्यवहृत हुआ है। तदनंतर इस शब्द के उन सभी अर्थों का उल्लेख किया जाता है जिन अर्थों में लेखक ने उन शब्दों का प्रयोग भिन्न भिन्न स्तरों पर किया है। इस प्रकार किसी एक लेखक के साहित्य का समय का अनुशीलन करने के लिए यह व्यक्ति कोश अत्यंत उपयोगी होता है। शेक्सपियर डिक्शनरी, तुलसी कोश, प्रसाद कोश, निराला कोश आदि ऐसे ही व्यक्ति कोश हैं जिनमें उक्त लेखकों की विभिन्न कृतियों में प्रयुक्त शब्दों और उनके प्रयोगों का आकार आदि क्रम से संकलन एवं विवेचन किया गया है। इन कोशों के द्वारा किसी एक लेखक की रचनाओं में प्रयुक्त शब्दों एवं उनके प्रयोगों की सम्यक जानकारी प्राप्त नहीं होती, अपितु उस लेखक की विचारधारा एवं रचना पद्धति का ज्ञान भी यथेष्ट रूप में हो सकता है। दूसरा पुस्तक कोश। इस कोश का निर्माण किसी एक पुस्तक में प्रयुक्त शब्दों के आधार पर होता है। यह कोश किसी एक पुस्तक का समय का अनुशीलन करने के लिए अधिक उपयुक्त होता है। इसमें किसी एक लेखक के विभिन्न रचनाओं के आधार पर उनके पृथक पृथक कोश तैयार किए जाते हैं और प्रसंगत वर्णनों के आधार पर उस पुस्तक के रचना में प्रयुक्त शब्दों या प्रयोगों की व्याख्या की जाती है। इस कोश का निर्माण करने के लिए किसी लेखक की कोई कृति ले ली जाती है, उसमें उपयुक्त शब्दों या प्रयोगों को आकारादि क्रम से संकलित कर लिया जाता है। वे शब्द एवं प्रयोग जिन जिन स्थलों पर आए हैं, उन स्थलों से या तो पंक्तियाँ उद्धृत कर दी जाती हैं या केवल पृष्ठ संख्या दे दी जाती है, और फिर उन शब्दों एवं प्रयोगों की सम्यक व्याख्या की जाती है। वह व्याख्या एवं विवेचना उस कृति के समझने में अत्यंत सहायक होती है, और इससे लेखक के दृष्टिकोण के साथ साथ उन प्रसंगों का यथेष्ट ज्ञान भी हो सकता है जहाँ पर उक्त शब्द प्रयुक्त हुए हैं। ऐसे कोशों में से रामचरितमानस कोश, बाइबल कोश, कुरान कोश, कामायनी कोश आदि प्रसिद्ध हैं। तीसरा, विषय कोश। जिन कोशों का निर्माण विभिन्न विषयों के आधार पर होता है, उन्हें विषय कोश कहते हैं। इन कोशों में किसी एक विषय से संबंधित संपूर्ण सामग्री का संकलन बड़ी निष्ठा एवं गहनता के साथ किया जाता है, और ज्ञान विज्ञान के किसी एक क्षेत्र का चयन करके तत्संबंधी सामग्री अधिक से अधिक मात्रा में देने का प्रयास किया जाता है। आज हमारे ज्ञान का प्रयास विविध क्षेत्रों में हो रहा है, और कोई एक ऐसा कोश नहीं हो सकता जो ज्ञान के सभी क्षेत्रों की जानकारी यथेष्ट रूप में दे सके। अतएव आज विविध विषयों के सम्यक जानकारी के लिए सभी विषयों के पृथक पृथक कोशों की नितांत आवश्यकता दिखाई देती है। इसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु आज एक एक विषय का अकेला कोश तैयार हो रहा है। जैसे यदि कोई दर्शन का सम्यक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए दर्शन कोश का निर्माण हो गया है। यदि कोई भूगोल का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए भूगोल कोश बन गया है। यदि कोई साहित्य का सम्यक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए साहित्य कोश मौजूद है, और यदि कोई मनोविज्ञान की यथेष्ट जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए मनोविज्ञान कोश का निर्माण हो गया है। ऐसे ही यदि कोई इतिहास, समाजशास्त्र, भाषा विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति आदि का सम्यक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए इतिहास कोश, समाजशास्त्र कोश, भाषा विज्ञान कोश, अर्थशास्त्र कोश, राजनीति कोश आदि का निर्माण हो चुका है। इन कोशों में पहले संपूर्ण विषय से संबंधित शब्दों का संकलन आकारादि क्रम से कर लिया जाता है, और फिर उन पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या एवं विवेचना की जाती है। इस कोश के निर्माण के लिए कभी कभी काल क्रमानुसार विषयों की वर्गों एवं उपवर्गों में विभाजित करके और तत्संबंधित शब्दों को आकारादि क्रम से संकलित करके उनकी व्याख्या की जाती है। ऐसे कोश उन जिज्ञासुओं एवं अनुसंधानकर्ताओं के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं जो किसी एक विषय का सम्यक अनुशीलन करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे अध्येताओं को अपनी संपूर्ण अध्ययन सामग्री एक स्थान पर ही कोश में संकलित मिल जाती है। चौथा, भाषा कोश। जिस कोश में किसी एक भाषा के शब्दों, प्रयोगों, मुहावरों, लोकोक्तियों आदि का आकारादि क्रम से संकलन करके उनकी सम्यक व्याख्या की जाती है, उसे भाषा कोश कहते हैं। ऐसे कोश में किसी एक शब्द से संबंधित प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्ति आदि उसी शब्द के साथ संकलित रहते हैं, और उनकी सम्यक व्याख्या भी उसी के साथ रहती है। भाषाओं के आधार पर इन कोशों को तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं, क एक भाषा कोश, ख द्विभाषा कोश, और ग अनेक भाषा कोश। जिस कोश में स्रोत भाषा और स्पष्टीकरण की भाषा एक होती है उसे एक भाषा कोश कहते हैं। जैसे वाचस्पत्यम, शब्द कल्पतरुम, हिंदी शब्द सागर, मानक कोश, बृहत हिंदी कोश आदि। जिस कोश में स्रोत भाषा और स्पष्टीकरण की भाषा पृथक पृथक होती है उसे द्विभाषा कोश कहते हैं। जैसे मोनियर विलियम्स कृत संस्कृत इंग्लिश कोश, और डॉक्टर ब्रजमोहन तथा बद्रीनाथ कपूर कृत मीनाक्षी हिंदी अंग्रेजी कोश आदि। ऐसे कोश अनुवाद कार्य के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। इनके अतिरिक्त जिस कोश में शब्द संग्रह एक भाषा में किया जाता है तथा उसकी व्याख्या उससे भिन्न भिन्न अनेक भाषाओं में की जाती है, ऐसे कोशों को अनेक भाषा कोश कहते हैं। टर्नर की नेपाली डिक्शनरी ऐसा ही शब्द कोश है जिसमें विभिन्न भाषाओं का प्रयोग हुआ है। भाषा कोश के अंतर्गत ही शब्द परिवार कोश, पर्यायवाची कोश, लोकोक्ति महावरा कोश, प्रयोग कोश, लोक भाषा कोश आदि भी आते हैं। इनमें से किसी जिस कोश में किसी एक आधार से बनने वाले अनेक शब्दों का संकलन विवेचन आकारादि क्रम से किया जाता है उसे शब्द परिवार कोश कहते हैं। जैसे ऋ धातु के हार के आधार पर बनने वाले आहार, अनुहार, विहार, संहार, उपहार, प्रहार, निहार, अध्याहार, निराहार आदि शब्दों को जिस कोश में संकलित किया जाए वह शब्द परिवार कोश कहलाएगा। ऐसे कोश प्रकृति प्रत्यय की जानकारी में बड़े उपयोगी होते हैं। जिस कोश में किसी भाषा के शब्दों के पर्यायवाची शब्दों का संकलन एवं विवेचन रहता है उसे पर्यायवाची कोश कहते हैं। यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी शब्द के पर्यायवाची शब्द किसी एक ही अर्थ के द्योतक नहीं होते। उनमें से प्रत्येक शब्द भिन्न भिन्न भाव, स्थिति एवं बिंब का बोधक होता है। इसलिए ऐसे कोशों की आवश्यकता उन प्रयोक्ताओं के लिए अत्यधिक होती है जो भाषा की आंतरिक शक्ति से पूर्णतः परिचित नहीं होते और मनमाने ढंग से शब्दों का प्रयोग किया करते हैं। जैसे लहर, वीच, तरंग, उर्मि, हिलोर सभी पर्यायवाची हैं, किंतु इनमें से प्रत्येक शब्द लहर की एक विशेष स्थिति का बोधक है। इसी प्रकार जिस कोश में किसी भाषा के लोकोक्तियों, मुहावरों का संग्रह आकार आदि क्रम से किया जाता है तथा उनकी व्याख्याएं उनके प्रयोग भी दिए जाते हैं उसे लोकोक्ति मुहावरा कोश कहते हैं। ऐसे कोश न केवल भाषा के जीवन शक्ति के परिचायक होते हैं अपितु किसी भाषा के लोकोक्तियों एवं उसके मुहावरों में विद्यमान सांस्कृतिक चेतना के भी द्योतक होते हैं और इनसे भाषा की आंतरिक शक्ति का यथेष्ट ज्ञान हो सकता है। जिस कोश में किसी भाषा के शब्दों एवं उनके प्रयोगों में विद्यमान अर्थ विच्छितियों का संकलन एवं विवेचन आकार आदि क्रम से किया जाता है उसे प्रयोग कोश कहते हैं। ऐसा कोश किसी भी भाषा का प्राण होता है, क्योंकि इस कोश द्वारा कोई भी व्यक्ति किसी भाषा के शब्दों एवं उनकी प्रयोगगत इकाइयों में निहित अर्थ विच्छितियों का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त करके भाषा का प्रयोग समुचित रूप में कर सकता है और उस भाषा के प्रयोगों का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त करके पूर्ण निष्णात बन सकता है। फाउलर कृत आधुनिक अंग्रेजी का प्रयोग कोश, ए डिक्शनरी ऑफ मॉडर्न इंग्लिश यूजेज, इसी प्रकार का कोश है। इनके अतिरिक्त जिस कोश में किसी एक लोक भाषा के विशिष्ट पदावली एवं उसके प्रयोगों का संकलन आकार आदि क्रम से किया जाता है और साथ ही उनकी व्याख्या भी प्रस्तुत की जाती है उसे लोक भाषा कोश कहते हैं। आजकल जबकि लोक भाषाओं के अध्ययन की ओर विद्वानों का ध्यान तीव्र गति से जा रहा है तब कोशों की अत्यधिक आवश्यकता है, जिनमें लोक भाषाओं का प्रचलित कृषक, लुहार, स्वर्णकार, धोबी, कुम्हार, तेली, पनबाड़ी, माली, चर्मकार आदि से संबंधित विविध प्रकार की शब्दावलियों उसके प्रयोगों का संकलन यथेष्ट रूप में किया जाए और उनकी व्याख्या भी प्रस्तुत की जाए। डॉक्टर अम्बादत्त सुमन कृत अलीगढ़ जिले की कृषि शब्दावली नामक ग्रंथ को तनिक परिवर्तित करके एक लोक भाषा के कृषि कोश का रूप दिया जा सकता है। पांचवा, विश्वकोश। जिस कोश में किसी एक विषय या ज्ञान की समस्त शाखाओं की सूचना दी जाती है उसे विश्वकोश यानी इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। इस कोश में मानव ज्ञान के सभी क्षेत्रों के महत्वपूर्ण शब्दों का चयन करके उन्हें आकार आदि क्रम से संकलित किया जाता है और उनकी संगोपांग व्याख्या प्रस्तुत की जाती है। आवश्यकता अनुसार उस शब्द के संबंधित पदार्थ का चित्र भी दिया जाता है। इस कोश के द्वारा किसी भी विषय के संबंध में प्रमाणिक एवं नवीनतम जानकारी सुगमता से प्राप्त हो सकती है। इसके प्रत्येक खंड का संपादन विषयानुसार किया जाता है। जैसे सचित्र विश्वकोश में साहित्य, कला, दर्शन और पुराण कथा पर यथेष्ट सामग्री दी गई है। इसके प्रथम खंड में साहित्य के विविध क्षेत्रों से शब्दावली का चयन करके उनकी व्याख्या प्रस्तुत की गई है। दूसरे खंड में कला के विविध क्षेत्रों में शब्दावली संकलित करके उनकी जानकारी प्रस्तुत की गई है। तीसरे खंड में दर्शन की विविध शाखाओं से यथेष्ट शब्दावली का चयन करके दार्शनिक शब्दों एवं ग्रंथों की जानकारी प्रस्तुत की गई है। चौथे खंड में पुराण कथाओं के विविध क्षेत्रों में शब्दावली संग्रह का करके उनकी व्याख्या दी गई है। इन सभी खंडों में चित्र भी पर्याप्त मात्रा में दिए गए हैं। ऐसे ही किसी एक विषय को आधार बनाकर विश्वकोश का निर्माण हो सकता है। अभी तक निर्मित विश्वकोशों में से ब्रिटेन का विश्वकोश, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, समाजशास्त्र का विश्वकोश, श्री नगेंद्र वसुकृत हिंदी विश्वकोश, हिंदी विश्व भारती, गोल्डन बुक ऑफ इंसाइक्लोपीडिया, सचित्र विश्वकोश आदि प्रसिद्ध हैं। भाषाकोश निर्माण पद्धति। भाषाकोश निर्माण की प्रायः तीन पद्धतियां प्रचलित हैं, वर्णनात्मक, तुलनात्मक और ऐतिहासिक। पहला, वर्णनात्मक पद्धति। जब किसी एक भाषा में किसी एक काल के अंतर्गत प्रचलित संपूर्ण शब्दों और उनके अर्थों का संकलन आकार आदि क्रम से किया जाता है तब कोश निर्माण की इस पद्धति को वर्णनात्मक पद्धति कहते हैं और ऐसे भाषाकोश को वर्णनात्मक भाषाकोश कहा जाता है। इस कोश में किसी एक काल में प्रयुक्त किसी भाषा के सभी शब्दों के अर्थों को बिना किसी क्रम के ही संकलित कर दिया जाता है। उन अर्थों के बारे में यह ध्यान नहीं दिया रखा जाता है कि कौन सा अर्थ अधिक प्रचलित है और कौन सा कम। प्रायः अधिक प्रचलित अर्थ को पहले लिखना चाहिए, फिर उससे कम प्रचलित अर्थों को देना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं किया जाता और जितने भी अर्थ याद आ जाते हैं उन सभी को शब्द के आगे लिख दिया जाता है। ऐसे विवरणात्मक पद्धति पर निर्मित विवरणात्मक कोशों में से हिंदी शब्द सागर, बृहत हिंदी कोश, बृहत शब्द सागर, हिंदी मानक कोश आदि प्रसिद्ध हैं। दूसरा, तुलनात्मक पद्धति। जब किसी भाषा के शब्दों एवं उसके प्रयोगों की परीक्षा एक पारिवारिक शाखा में पूर्वोत्तर क्रम के आधार पर की जाती है तथा उस भाषा की सहवर्तनी भाषाओं में प्राप्त समान शब्दों और उनके प्रयोगों से उनकी तुलना की जाती है, तब भाषा कोश निर्माण की इस पद्धति को तुलनात्मक पद्धति कहते हैं और ऐसे कोशों को तुलनात्मक भाषा कोश कहते हैं। टर्नर कृत नेपाली डिक्शनरी इस पद्धति पर निर्मित तुलनात्मक भाषा कोश का सुंदर उदाहरण है। तीसरा, ऐतिहासिक पद्धति। जब किसी भाषा के शब्द एवं उनके उसके प्रयोगों को काल क्रमानुसार संकलित करके उनकी परीक्षा करते हुए भाषा कोश का निर्माण किया जाता है तब उस पद्धति को ऐतिहासिक पद्धति और ऐसे भाषा कोश को ऐतिहासिक भाषा कोश कहते हैं। इस कोश में किसी भाषा के किसी एक काल में प्रचलित शब्दों अर्थों एवं प्रयोगों का संकलन नहीं किया जाता अपितु ऐतिहासिक आधार पर विभिन्न कालों में प्रयुक्त किसी शब्द के विविध रूपों अर्थों एवं प्रयोगों को काल क्रमानुसार चयन करके उन्हें संकलित किया जाता है। इससे शब्दों के क्रमिक विकास का ज्ञान बड़ी प्रकार से हो सकता है और ऐसे कोश पाठालोचन के लिए बड़े उपयोगी हो सकते हैं। कोश निर्माण विधि। प्रत्येक कोश का निर्माण किसी ज्ञान या विषय की यथेष्ट जानकारी प्रदान करने के लिए होता है, इसलिए वही कोश अधिक उपयोगी होता है जिसमें उपयोगकर्ता को वांछित संदर्भ सुगमता से प्राप्त होते हैं। इसमें स्रोत भाषा भाषी जिज्ञासु को अपनी जिज्ञासाओं की शांति सरलता से हो जाती है। इसमें भाषा संबंधी सभी सूचनाएं व्यवस्थित क्रम में संकलित रहती हैं। इसमें अध्येताओं को वांछित संदर्भ एवं प्रसंग यथेष्ट रूप से मिल जाते हैं तथा जिसे आधार बनाकर एक शोधकर्ता भी अपने विषय की प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध कर सकता है। ऐसे कोश के निर्माण हेतु निम्नलिखित 10 बातें अत्यंत उपेक्षित होती हैं। पहला, शब्द संग्रह। कोश का निर्माण करने के लिए सर्वप्रथम कोशकार को शब्दों का संग्रह करना पड़ता है। यदि वह किसी वर्तमान जीवित भाषा का कोश तैयार करना चाहता है तो उसे भाषा के बोलने वालों से तथा उसके साहित्य के शब्दों का संकलन करना चाहिए। यदि वह किसी प्राचीन भाषा का कोश तैयार करना चाहता है तो उसे उस भाषा के में लिखित सभी प्रामाणिक ग्रंथों से उस भाषा की शब्दावली का चयन करना चाहिए। यदि वह किसी विषय या व्यक्ति का कोश तैयार करना चाहता है तो तद विषयक प्रामाणिक ग्रंथों से उनकी पारिवारिक शब्दावली को ग्रहण करना चाहिए। शब्द संग्रह करते समय इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी शब्द छूटने न पाए और जीवित वर्तमान भाषा के सतत प्रयुक्त शब्दावली पूर्णतया उसके कोशों में संकलित हो जाए, क्योंकि प्राचीन भाषा के शब्द तो निश्चित रहते हैं जबकि जीवित वर्तमान भाषा में लगातार शब्दों की वृद्धि होती रहती है। अतः बड़ी सावधानी से अत्यंत जागरूक होकर वर्तमान जीवित भाषा के अद्यतन शब्दों का संग्रह करना चाहिए। दूसरा, वर्तनी। शब्द संग्रह के उपरांत शब्दों की वर्तनी ठीक ठीक रूप में देना आवश्यक होता है, क्योंकि कोश एक प्रामाणिक संदर्भ ग्रंथ होता है और उसी के आधार पर वर्तनी की शुद्धि एवं अशुद्धि का निर्माण किया जाता है। यदि उसमें भी किसी शब्द की वर्तनी अशुद्ध लिखी होगी तो उस भाषा के शब्दों की अशुद्ध वर्तनी का प्रसार एवं प्रचार हो जाएगा। अतएव कोशकार को वर्तनी संबंधी अनेक रूपता को दूर करके एक रूपता लाने के लिए अत्यंत प्रचलित एवं प्रामाणिक वर्तनी को भी अपने कोश में स्थान देना चाहिए। वर्तनी संबंधी शुद्धता एवं अशुद्धता के बारे में अपने निर्णय की सूचना कोश की भूमिका में दे देनी चाहिए। तीसरा, शब्द निर्णय। कोश में शब्द निर्णय का प्रश्न अत्यंत जटिल होता है, क्योंकि कोशकार के सामने एक बहुत बड़ी समस्या उन शब्दों की अवस्थित होती है जो ध्वनि या रूप की दृष्टि से समान होते हैं किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों के अर्थ की दृष्टि से अलग अलग लिखा जाए या एक स्थान पर लिख कर उनके भिन्न भिन्न अर्थ लिख दिए जाएँ। अच्छे कोशकार ऐसे शब्दों को प्रायः अलग अलग ही लिखा करते हैं और भिन्न भिन्न भाषाओं में प्रयुक्त अर्थों को उनके सम्मुख लिख देते हैं। जैसे आम को संस्कृत में कच्चा या अनपका कहते हैं, आम हिंदी में रसाल कहलाता है और आम अरबी में साधारण या सामान्य के अर्थ में आता है। अतः अच्छे कोशों में उक्त शब्द को 3 बार देकर उसके 3 भाषाओं में प्रयुक्त होने को देना अभिष्ट होता है। चौथा, शब्द क्रम। प्रत्येक कोश में शब्दों का संग्रह एक विशेष क्रम में किया जाता है। आजकल कई प्रकार के शब्द क्रम प्रचलित हैं, इनमें से 5 प्रमुख हैं। क, वर्णानुक्रम, जहाँ शब्दों का संग्रह वर्णों के काल क्रमानुसार करते हैं उसे वर्णाक्रम कहते हैं। संसार कि अधिकांश कोशों में इसे वर्णानुक्रम से शब्दों का संग्रह किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि क से आरंभ होने वाले शब्द एक साथ होंगे, फिर ख से वाले शब्द आएंगे, फिर इसी क्रम अनुसार सभी शब्द रखे जाते हैं। ख अक्षर क्रम, जहाँ कोश शब्दों का संग्रह किसी एक अक्षर के आधार पर ही किया जाता है, जैसे अक्षर संख्या या एकाक्षरी कहते हैं। भारत, चीन आदि कुछ देशों में ऐसे एकाक्षरी क्रम वाले कोश मिलते हैं। इनमें से एक अक्षर वाले शब्द पहले, फिर दो अक्षर वाले, फिर तीन अक्षर वाले, फिर चार अक्षर वाले और आगे इसी क्रम में शब्दों को संकलित किया जाता है। ग विषय क्रम, कुछ कोशों में शब्दों को विषय के क्रम को वह संकलित किया जाता है, जैसे सारे जीवों के शब्द एक स्थान पर, धर्म के शब्द एक स्थान पर, कला के शब्द एक स्थान पर, विज्ञान के शब्द एक स्थान पर, साहित्य के शब्द एक स्थान पर आदि। घ सुर क्रम, कुछ भाषाओं के कोशों में शब्दों का संकलन तो वर्णाक्रम में किया जाता है, न अक्षर क्रम में और न विषय क्रम में, अपितु उन्हें सुरों के क्रम में रखा जाता है। सुर प्रधान भाषाओं के कोश इसी तरह तैयार किए जाते हैं। अंग व्युत्पत्ति क्रम, जहाँ कोश के शब्द व्युत्पत्ति के क्रम में संकलित किए जाते हैं उसे व्युत्पत्ति क्रम कहते हैं। अरबी के कोश प्राय व्युत्पत्ति के आधार पर तैयार किए जाते हैं। पांचवा व्याकरण, कोश के कथान क्रमानुसार शब्दों का संकलन करके उनके सामने उनके व्याकरण रूपों का भी उल्लेख होना चाहिए, जिससे पाठक एवं देवता को यह ठीक ठीक पता चल जाए कि अमुक शब्द संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है या अव्यय आदि में से कुछ है। कभी कभी कोई शब्द कई व्याकरणिक रूपों में प्रयुक्त होने वाला होता है, ऐसी स्थिति में उस शब्द के मूल व्याकरणिक रूप का भी देना ही अभिष्ट होता है। छठा उच्चारण, कोश में प्रत्येक शब्द के उच्चारण संबंधी संकेत भी होने चाहिए, जिनसे प्रयोक्ता एवं अध्येता को किसी शब्द के उच्चारण की कठिनाई न हो और वह किसी भाषा के शब्दों का सही से उच्चारण कर सके। कभी कभी शब्द लिखा कुछ जाता है और बोला कुछ जाता है। अंग्रेजी भाषा में तो ऐसे अनेक मिलते हैं जिनसे लिखने और उच्चारण करने में आकाश पाताल का अंतर होता है, जैसे बट का उच्चारण बट है जबकि पट का उच्चारण पुट है। ऐसे ही नाइट शब्द लिखा जाता है और नाइट बोला जाता है। हिंदी में भी सिंह लिखा जाता है किंतु उसका सही उच्चारण होता है सिंह। अतः कोश प्रत्येक शब्द के सही उच्चारण का भी उल्लेख होना चाहिए। सातवां व्युत्पत्ति, कोशकार को शब्दों की व्युत्पत्ति का उल्लेख भी कोश के साथ करना चाहिए, जिसमें अध्येता एवं प्रयोक्ता को यह ठीक ठीक पता चल सके कि अमुक शब्द कौन सी प्रकृति और कौन से प्रत्यय के प्रयोग से बना है। जैसे संस्कृत शब्द सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से भूषण अर्थ से सुट प्रत्यय होने पर बना है, अतः कोश में इस तरह संकेत रहना चाहिए। संस्कृत यानी सम धन क्री धन सुट आदि, संस्कृत के सभी कोशों में इस तरह की व्युत्पत्तियां मिल जाती हैं। आठवां अर्थ, प्रत्येक शब्द का संकलन करके उसका लोक प्रचलित अर्थ भी देना चाहिए। एक कोशकार को वर्णनात्मक कोश में तो लोक प्रचलित अर्थ ही देना चाहिए किंतु ऐतिहासिक कोश में क्रमिक इतिहास के आधार पर शब्द के सभी रूपों और अर्थों का उल्लेख करना चाहिए। जैसे भद्र शब्द का प्राचीन अर्थ है सज्जन शुद्ध, किंतु उसके विकृत रूपों में से भल्ल का अर्थ है भला या अच्छा और भद्र का अर्थ है भद्दा या बुरा। ये अर्थ भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो शब्द का पर्यायवाची अर्थ दिया जाता है और दूसरे उनकी व्याख्या या परिभाषा दी जाती है। जैसे आम्र शब्द का अर्थ है भला आम रसा आदि तथा दूसरा यह एक प्रकार का प्रसिद्ध रसीला फल होता है। यह व्याख्या या परिभाषा जहाँ आवश्यक हो वहीं देनी चाहिए। नौवां प्रयोग, किसी शब्द के अर्थ की स्पष्ट जानकारी के लिए एक अक्षय कोश में उसके प्रामाणिक प्रयोग भी देने चाहिए। इन शब्द प्रयोगों के कारण एक अध्येता एवं प्रयोक्ता को उस शब्द के प्रयोग करने में सुगमता होती है और उस शब्द का अर्थ ठीक प्रकार से हृदयंगम हो जाता है। परंतु प्रयोगों के लिए जो उदाहरण लिए जाए वो सुप्रसिद्ध लेखकों के प्रामाणिक ग्रंथों से ही लिए जाने चाहिए। मुहावरे एवं लोकोक्तियों की जानकारी के लिए तो ये प्रयोग अत्यधिक उपयोगी होते हैं। यदि प्रयोगों के कई उदाहरण लिए जाएँ तो वे काल क्रमानुसार संकलित करने चाहिए, जिससे विविध कालों के प्रयोगों का भी ऐतिहासिक ज्ञान कोश अध्येता को हो सकता है। दसवां चित्र, कभी कभी किसी शब्द की स्पष्ट जानकारी न तो पर्यायवाची शब्द से होती है, न अर्थ से होती है और न व्याख्या का प्रयोग से ही होती है। अतः कोशकार को चाहिए कि ऐसे शब्दों से संबंधित पदार्थों के चित्र कोश में दे, जिससे उनका यथेष्ट ज्ञान कोश अध्येता को हो सके। अतः अच्छे अच्छे कोशों में स्पष्टता के लिए अनेक ऐसे चित्र दिए जाते हैं जिनसे उस पदार्थ का सही सही ज्ञान हो सकता है, जिसकी ओर वह शब्द संकेत कर रहा है, अतः एक कोश में आवश्यक चित्रों का भी देना उपयोगी होता है। कोश की उपयोगिता। पहला, प्रत्येक कोश का निर्माण प्रायः सर्वसाधारण की जानकारी के लिए होता है, अतः उसमें ऐसे ही बातों का संकलन किया जाता है जो साधारण से साधारण पाठक के लिए भी आवश्यक होती है और जिनसे उसे उस शब्द या वस्तु की जानकारी सुगमता से हो सकती है। अतः साधारण व्यक्तियों के ज्ञान वृद्धि के लिए कोश अत्यंत उपयोगी होता है। दूसरा, बहुत से कोशों का निर्माण किसी विशिष्ट विषय में विशिष्ट रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए होता है, अतः ऐसे कोश उन विशेष रुचि वालों के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं क्योंकि उन्हें वांछित सामग्रियां यथेष्ट रूप में मिल जाती है। तीसरा, भाषा कोश में किसी भाषा विशेष की संपूर्ण विच्छित्तियों का संकलन बड़े मनोयोग के साथ किया जाता है, अतः ऐसे कोश किसी भाषा विशेष के अध्येताओं के लिए बड़े उपयोगी होते हैं क्योंकि वे उस भाषा के विविध विच्छित्तियों से भली प्रकार परिचित होकर उसका सम्यक प्रयोग कर सकते हैं तथा उस भाषा के शब्दार्थों को हृदयंगम करने में उन्हें सरलता हो जाती है। चौथा, प्रायः कोशों में कठिन दुरूह अप्रचलित एवं अव्यवहारिक शब्दों के अर्थ एवं प्रयोग भी दिए जाते हैं, अतः ऐसे शब्द यदि कहीं साहित्य या अन्य स्थल पर मिल जाते हैं तो उनकी जानकारी हेतु कोश में बड़ी सहायता मिलती है। पांचवा, जिन कोशों में लोकोक्ति एवं मुहावरों के अर्थ एवं प्रयोग दिए जाते हैं वे उन अध्येताओं के लिए बड़े उपयोगी होते हैं जो मुहावरे एवं लोकोक्तियों का यथेष्ट ज्ञान नहीं रखते। ऐसे कोश में केवल किसी भाषा का ही ज्ञान नहीं होता अपितु उस भाषा के अभिव्यंजना शक्ति का भी यथेष्ट बोध हो सकता है। छठा, कोशों में शब्दों की शुद्ध वर्तनी एवं उच्चारण में दिए जाते हैं, इससे किसी भाषा को सीखने में बड़ी सुगमता होती है क्योंकि उन कोशों के माध्यम से एक साधारण व्यक्ति भी किसी भाषा के शब्दों की शुद्ध वर्तनी और उसके शुद्ध उच्चारण को सही ढंग से सीख कर उस भाषा का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त कर सकता है। सातवा, कोशों में शब्दों के निर्माण की विधि को समझाने के लिए उनके प्रकृति और प्रत्यय का भी उल्लेख किया जाता है। ऐसे कोशों से किसी भाषा के शब्दों की व्युत्पत्ति का ज्ञान भली प्रकार हो सकता है और ऐसे कोश शब्द निर्माण विधि की जानकारी के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। आठवां, कोशों में उन पदार्थों के चित्र भी रहते हैं जिनको समझाने के लिए कोशकार व्याख्या का सहारा तो लेता है किंतु फिर भी ठीक ढंग से समझा नहीं पाता, परंतु चित्रों के माध्यम से उनका यथेष्ट ज्ञान हो जाता है। अतः कोशों में अंकित ये चित्र किसी पदार्थ को समझने के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं।